एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी शख्सियत की जिंदगी और उनकी लिखी कहानी में गहरे उतरने वाले हैं जिनका नाम आप जानते ही है, 20वीं सदी के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, नेल्सन मंडेला और उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक पूरे युग का दस्तावेज है।
बिल्कुल सही कहा, इसे महज एक आत्मकथा कहना शायद मतलब पूरी बात नहीं होगी। ये दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद यानी अपार्थाइड उसके खिलाफ चले एक लंबा, बहुत कठिन और आखिरकार कामयाब संघर्ष की कहानी है, और इसे उस संघर्ष के सबसे बड़े नायक ने खुद बयान किया है। मंडेला सिर्फ एक क्रांतिकारी या नेता नहीं थे, वो तो आधुनिक दक्षिण अफ्रीका के निर्माता थे, पहले लोकतांत्रिक राष्ट्रपति, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, और दशकों तक आप देखिए दुनिया भर में अन्याय के खिलाफ हिम्मत और उम्मीद का चेहरा बने रहे।
और कमाल की बात यह है कि उनकी कहानी आज भी उतनी ही ताकतवर और जरूरी महसूस होती है ना? ये हमें याद दिलाती है कि कैसे पक्के इरादे, नैतिक बल और हाँ, सुलह की वो अविश्वसनीय शक्ति, उससे गहरे से गहरे जख्मों को भरा जा सकता है, पूरे समाज को बदला जा सकता है।
बिल्कुल,
तो चलिए इस लंबी और असाधारण यात्रा को कदम दर कदम समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। मंडेला का जन्म का नाम रोलीलाला था, मैंने सुना है इसका मतलब होता है शरारती या कुछ उपद्रवी जैसा।
हाँ, थिम्बू भाषा में इसका मतलब कुछ ऐसा ही है, पेड़ की डाल खींचने वाला या मुसीबत मोल लेने वाला। और शायद उनके आगे के जीवन की एक झलक इसमें दिखती भी है। उनका बचपन पूर्वी केप के एक छोटे से गांव कूनू में गुजरा। उनका परिवार थिम्बू शाही खानदान से ताल्लुक रखता था, लेकिन जब वो बहुत छोटे थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनका पालन पोषण थिम्बू समुदाय के जो कार्यवाहक शासक थे, चीफ जोंगिन ताबा, उन्होंने मिखेजवेनी के ग्रेट प्लेस में किया। ये उनके जीवन का एक अहम दौर था। देखिए, वहीं उन्होंने पारंपरिक अफ्रीकी शासन के तौर तरीके देखे और सीखे। खास तौर पे उन्होंने ये जाना कि एक अच्छा नेता सबकी बात ध्यान से सुनता है और कोशिश करता है कि फैसले मतलब आम सहमति से हों। ये सबक उनके बाद के राजनीतिक जीवन में, खासकर जो मुश्किल समझाते हुए, उन सब के दौरान बहुत काम आया। वैसे स्कूल में एक टीचर ने उन्हें नेल्सन नाम दिया था। उस वक्त ऐसा अश्वेत बच्चों के साथ अक्सर होता था, उन्हें अंग्रेजी नाम दे दिए जाते थे।
फिर वो जोहान्सबर्ग कैसे पहुंचे? एक कहानी है कि वो एक तयशुदा शादी से बचने के लिए भाग गए थे।
हाँ, ये किस्सा काफी मशहूर है, और जोहान्सबर्ग में उनका सामना हुआ शहरी जिंदगी की सख्तियों से और सबसे बढ़कर रंगभेद की उस क्रूर व्यवस्था से। वहां उन्होंने जिंदा रहने के लिए कई छोटे मोटे काम किए, जैसे खदान में सुरक्षा गार्ड की नौकरी और साथ ही कानून की पढ़ाई भी शुरू की। तो ये शहर उनके लिए एक तरह से राजनीतिक चेतना जागने का केंद्र बना।
और यही उनकी मुलाकात उन लोगों से हुई जो फिर जिंदगी भर उनके साथ ही रहे, जैसे वाल्टर सिसुलू, ओलिवर टैम्बो।
बिल्कुल, यही वो वाल्टर सिसुलू और ओलिवर टैम्बो जैसे जोशीले नौजवान नेताओं से मिले। सिसुलू ने तो एक तरह से उन्हें राजनीति में मेंटर किया, खींचा, और टैम्बो उनके सबसे गहरे दोस्त और आगे चलकर कानूनी साझेदार भी बने। ये लोग अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC में शामिल हुए, लेकिन उन्हें लगा कि ANC का जो पुराना नेतृत्व था वो बहुत धीमा और कह सकते हैं नरम था, इसलिए 1944 में उन्होंने मिलकर ANC यूथ लीग बनाई। ये ज्यादा आक्रामक और सक्रिय रवैया रखती थी। बाद में मंडेला और टैम्बो ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका की पहली अश्वेत लॉ फर्म भी खोली। ये रंगभेद के शिकार लोगों को कानूनी मदद देती थी।
लेकिन जाहिर है हालात तो बिगड़ते ही गए होंगे, शांतिपूर्ण विरोध करना लगातार मुश्किल होता गया होगा।
हाँ, बहुत ज्यादा। 1948 में जब नेशनल पार्टी जीती तो उन्होंने रंगभेद को बाकायदा सरकारी नीति बना दिया और ज्यादा सख्ती से लागू किया। इसके जवाब में ANC ने 1952 में डिफायंस कैंपेन चलाया, अवज्ञा अभियान।
अवज्ञा अभियान मतलब
जानबूझकर अन्यायपूर्ण कानूनों को तोड़ना, जैसे कि अलग अलग नस्लों के लिए जो जगहें तय थीं वहां जाना। हजारों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, गिरफ्तारियां दी।
और फिर आया फ्रीडम चार्टर 1955 में, वो क्या था असल में?
हाँ, 1955 में ANC और दूसरे समूहों ने मिलकर कांग्रेस ऑफ द पीपल नाम का एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया क्लिपटाउन में। यही फ्रीडम चार्टर को अपनाया गया। ये एक दस्तावेज था जिसने पहली बार एक ऐसे दक्षिण अफ्रीका का सपना पेश किया जहां नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, सबको बराबर के अधिकार मिलें, जमीन का बंटवारा ठीक से हो और सब लोग शांति से साथ रह सकें। ये भविष्य के दक्षिण अफ्रीका का कह सकते हैं घोषणा पत्र बन गया।
लेकिन फिर वो भयानक घटना हुई
जिसने सब कुछ बदल दिया, शार्पविले नरसंहार 1960।
हाँ, 1960 में शार्पविले में पुलिस ने पास कानूनों के खिलाफ शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। 69 निहत्ते लोग मारे गए। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया और दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष को एक नए, ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया। सरकार ने ANC और दूसरे आंदोलनों पर पाबंदी लगा दी
और इसी के बाद मतलब मजबूरी में सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना गया।
बिल्कुल, शांतिपूर्ण विरोध के जब सारे रास्ते बंद होते दिखे तो मंडेला और उनके साथियों ने बहुत भारी मन से लेकिन जरूरी समझकर सशस्त्र संघर्ष का फैसला किया। उन्होंने ANC की मिलिट्री विंग बनाई, उमखोंतो वेसिज़वे, MK, इसका मतलब होता है राष्ट्र का भाला। मकसद था सरकारी ठिकानों पर तोड़फोड़ करना ताकि सरकार पर दबाव बने, लेकिन कोशिश ये थी कि किसी की जान ना जाए। ये एक बड़ा शिफ्ट था।
इसके बाद मंडेला अंडरग्राउंड हो गए और उन्हें ब्लैक पिंपरनेल कहा जाने लगा।
हाँ, वो भेस बदलकर देश में और अफ्रीका में भी घूमते रहे, MK को संगठित करते रहे और सरकार की पकड़ से बचते रहे, इसीलिए प्रेस ने उन्हें ये नाम दिया। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला। 1962 में उन्हें पकड़ लिया गया, अवैध रूप से देश छोड़ने और हड़ताल भड़काने के आरोप में 5 साल की सजा हुई।
और फिर वो जेल में ही थे जब रिवोनिया ट्रायल शुरू हुआ।
जी हाँ, जब वो जेल में थे, पुलिस ने रिवोनिया में MK के एक खुफिया ठिकाने पर छापा मारा। वहां मिले दस्तावेजों के आधार पर मंडेला और ANC के दूसरे बड़े नेताओं पर तोड़फोड़ और सरकार को बलपूर्वक उखाड़ फेंकने की साजिश रचने का मुकदमा चलाया गया, रिवोनिया ट्रायल। आरोप इतने गंभीर थे कि सजाए मौत हो सकती थी।
और इसी मुकदमे में उन्होंने वो मशहूर भाषण दिया था ना, स्पीच फ्रॉम द डॉक।
हाँ, कटघरे से दिया गया उनका वो बयान इतिहास बन गया। उन्होंने बचाव में गवाही देने की बजाय रंगभेद के अन्याय को दुनिया के सामने रखा और अपने आदर्शों को पूरी ताकत से बयान किया।
मुझे उनकी वो पंक्तियां आज भी याद हैं, मैंने श्वेत वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और मैंने अश्वेत वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई लड़ी है।
मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज के आदर्श को संजोया है जिसमें सभी व्यक्ति सद्भाव और समान अवसरों के साथ मिलकर रहें।
ये एक ऐसा आदर्श है जिसके लिए मैं जीने और जिसे प्राप्त करने की उम्मीद करता हूँ, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये एक ऐसा आदर्श है जिसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर।
बिल्कुल, इस बयान ने उन्हें दुनिया भर में नैतिक साहस का प्रतीक बना दिया। मुकदमे के अंत में उन्हें और उनके साथियों को मौत की सजा तो नहीं हुई, लेकिन आजीवन कारावास मिला। और इसके बाद शुरू हुई उनकी जिंदगी की सबसे लंबी और कठिन परीक्षा, 27 साल जेल की सलाखों के पीछे। इसका ज्यादातर हिस्सा उन्होंने केप टाउन के पास समंदर में बने उस कुख्यात रॉबिन आइलैंड पर बिताया।
रॉबिन आइलैंड, नाम सुनते ही एक क्रूर और भयानक जगह की तस्वीर जहन में आती है।
और वो थी भी, वहां कैदियों से सख्त मजदूरी करवाई जाती थी, चूना खदानों में। उन्हें हर तरह से अपमानित किया जाता था, बाहरी दुनिया से लगभग काट दिया जाता था। मकसद था कैदियों के हौसले को तोड़ना। लेकिन मंडेला और उनके साथी टूटे नहीं। उन्होंने उस जेल को ही सीखने और सिखाने की जगह बना दिया। इसे मजाक में रॉबिन आइलैंड यूनिवर्सिटी कहा जाने लगा।
ये कमाल है, जेल के अंदर यूनिवर्सिटी।
वहां क्या होता था, कैसे?
कैदी छिपछिपाकर एक दूसरे को पढ़ाते थे, इतिहास, राजनीति, साहित्य, भाषाएं। गंभीर राजनीतिक बहसों का दौर चलता था। उन्होंने अपनी सोच को और पैना किया। मंडेला ने खुद वहां अनुशासन, आत्मनियंत्रण का कड़ा अभ्यास किया और सबसे अहम बात, उन्होंने अपने दुश्मनों को समझने की कोशिश की। उन्होंने अफ्रिकांस भाषा सीखी जो ज्यादातर श्वेत शासकों और जेल गार्डों की भाषा थी, और अफ्रीकानर लोगों का इतिहास पढ़ा।
ये तो गजब की दूरदर्शिता थी, अपने उत्पीड़कों की भाषा और इतिहास सीखना। ये क्यों किया उन्होंने? हाँ, ये दिखाता है कि वो सिर्फ विरोध नहीं कर रहे थे बल्कि वो समाधान की जमीन भी तैयार कर रहे थे। वो समझना चाहते थे कि उनके विरोधी ऐसा क्यों सोचते हैं, उनके डर क्या हैं, उनकी प्रेरणाएं क्या हैं। फिर 1980 के दशक के मध्य में जेल में रहते हुए ही उन्होंने एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा कदम उठाया, सरकार के साथ गुप्त बातचीत शुरू की। उस वक्त ANC की आधिकारिक नीति बातचीत न करने की थी, इसलिए ये बहुत ही नाजुक मामला था।
अकेले ये फैसला लेना तो बहुत मुश्किल रहा होगा उनके लिए, अपने साथियों से सलाह किए बिना।
बेहद मुश्किल। उन पर बिकने का या आंदोलन को धोखा देने का आरोप लग सकता था, लेकिन वो समझ चुके थे कि अंततः हल बातचीत से ही निकलेगा, बल प्रयोग से गृह युद्ध ही होगा। इन गुप्त वार्ताओं ने धीरे धीरे माहौल बनाया। आखिरकार दक्षिण अफ्रीका के अंदर और बाहर बढ़ते दबाव के बीच 11 फरवरी 1990 को नेल्सन मंडेला 27 साल बाद जेल से रिहा हुए। वो मंजर तो पूरी दुनिया ने देखा था।
लेकिन रिहाई के बाद भी रास्ता आसान नहीं था, जैसा आपने कहा। आगे क्या हुआ?
बिल्कुल नहीं, अगला दौर बहुत उथल पुथल भरा था। एक तरफ लोकतंत्र के लिए बातचीत चल रही थी, दूसरी तरफ राजनीतिक हिंसा भयानक रूप से बढ़ रही थी। देश गृह युद्ध के कगार पर खड़ा था। लेकिन मंडेला ने तत्कालीन राष्ट्रपति FW de Klerk के साथ मिलकर बड़ी समझदारी और साहस से देश को संभाला। इसी काम के लिए दोनों को 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला और फिर 1994 में दक्षिण अफ्रीका में पहले ऐसे चुनाव हुए जिनमें सभी नस्लों के लोगों ने वोट डाला और नेल्सन मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए। ये उनकी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक अहम पड़ाव था, शायद मंजिल नहीं पर एक बहुत बड़ा पड़ाव।
तो अगर हम उनके जीवन के सार को समझने की कोशिश करें, उनका मूल दर्शन क्या था, क्या चीज उन्हें चलाती थी?
अगर उनकी पूरी जिंदगी और इस किताब को देखें तो उनका मूल दर्शन स्वतंत्रता की उनकी अपनी समझ के साथ मतलब विकसित होता नजर आता है। बचपन में आज़ादी का मतलब था खेतों में दौड़ना, तैरना, खुले घूमना। जवानी में ये निजी आज़ादी थी, मर्जी से कहीं जाना, पढ़ना, शादी करना। लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि जब तक उनके लोग, उनका पूरा समुदाय, उनकी नस्ल गुलाम है, तब तक उनकी अपनी निजी आज़ादी भी बेमानी है, एक तरह का भ्रम है।
और फिर उनकी ये समझ और भी गहरी हुई जब उन्होंने कहा कि सिर्फ गुलाम को ही नहीं जालिम को भी आज़ाद कराने की ज़रूरत है। ये बात मुझे हमेशा बहुत चौंकाती है और सोचने पर मजबूर करती है।
हाँ, ये उनकी सोच का शायद सबसे गहरा और क्रांतिकारी पहलू है। उनका मानना था कि रंगभेद जैसी व्यवस्था सिर्फ दबाए गए लोगों को ही नहीं बल्कि दबाने वालों को भी अमानवीय बना देती है। जालिम भी तो नफरत और पूर्वाग्रह का कैदी होता है, उसकी इंसानियत भी संकुचित हो जाती है। इसलिए सच्ची आज़ादी तब है जब दोनों उत्पीड़ित और उत्पीड़क इस नफरत की कैद से आज़ाद हों। मुक्ति एक साझा सफर है, अकेले नहीं मिलती।
त्याग की भावना वो भी उनके जीवन में कूट कूट कर भरी थी।
यकीनन, अपने लोगों की आज़ादी के बड़े मकसद के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपना वकालत का करियर, अपनी पारिवारिक जिंदगी, बच्चों को बड़ा होते देखने का सुख और आखिर में अपनी जिंदगी का 27 साल, लगभग 3 दशक। ये दिखाता है कि कुछ आदर्श इतने बड़े होते हैं कि उनके लिए कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है। ये साधारण बात नहीं है।
शिक्षा को भी उन्होंने हमेशा बहुत अहमियत दी, जैसा आपने रॉबिन आइलैंड यूनिवर्सिटी का जिक्र किया।
हाँ, शिक्षा उनके लिए आज़ादी का एक हथियार थी। चाहे वो यूनिवर्सिटी की औपचारिक डिग्री हो या जेल के अंदर छुप छुपा कर ज्ञान हासिल करना और बांटना। वो मानते थे कि ज्ञान आपको ताकत देता है, आपकी सोच को आज़ाद करता है, आपको दुनिया समझने में मदद करता है। एक और खास बात थी उनमें, सिद्धांत और व्यावहारिकता का अद्भुत संतुलन। वो उसूलों पर पक्के थे लेकिन हालात के मुताबिक रणनीति बदलने में माहिर थे। शुरुआत में गांधी से प्रेरित होकर अहिंसा का रास्ता अपनाया, जब वो रास्ता बंद हुआ तो मजबूरन सशस्त्र संघर्ष की ओर मुड़े और फिर जब मौका बना तो दुश्मन से बातचीत करने में भी नहीं हिचके। लक्ष्य एक ही रहा, एक गैर नस्लीय लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका, लेकिन वहां तक पहुंचने के रास्ते बदलते रहे। वो जिद्दी नहीं थे, व्यावहारिक थे।
और शायद सबसे बड़ी बात जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे, सुलह का रास्ता चुनना। इतना कुछ सहने के बाद बदला लेने की भावना को दबाकर माफी और मेल मिलाप की बात करना, ये कैसे मुमकिन हुआ होगा उनके लिए?
ये मंडेला की महानता थी और शायद इसमें उबुंटू के अफ्रीकी दर्शन का भी बड़ा हाथ था, जिसकी जड़ें उनके बचपन और समुदाय में थी। उबुंटू का मोटा मोटा मतलब है मैं हूं क्योंकि हम हैं। यानी हमारी इंसानियत एक दूसरे से जुड़ी है, मेरी भलाई तुम्हारी भलाई में है और तुम्हारी भलाई मेरी भलाई में है। उन्होंने समझा कि अगर दक्षिण अफ्रीका को आगे बढ़ना है तो अतीत की कड़वाहट को पीछे छोड़कर सबको साथ आना होगा, श्वेत और अश्वेत दोनों को। इसीलिए उन्होंने सत्य और सुलह आयोग का समर्थन किया जहां लोग अपने जुल्मों को स्वीकार कर माफी मांग सकते थे।
मंडेला की जिंदगी में यकीनन कई मोड़ आए होंगे, लेकिन अगर 3 सबसे अहम, सबसे निर्णायक मोड़ चुनने हो तो वो कौन से होंगे आपके हिसाब से?
ये मुश्किल चुनाव है, पर हाँ, 3 घटनाएं या फैसले खास तौर पर निर्णायक लगते हैं। पहला मेरे ख्याल से 1960 में शार्पविले नरसंहार के बाद उमखोंतोबे सिज़वे बनाने का फैसला।
हाँ, ये अहिंसा से हटकर एक बहुत बड़ा कदम था, एक बड़ा बदलाव।
बिल्कुल, ये ANC की रणनीति में एक बुनियादी बदलाव था। यह फैसला हल्के में नहीं लिया गया था। ये इस कड़वे सच का सामना था कि सरकार शांतिपूर्ण विरोध का जवाब सिर्फ और ज्यादा जुल्म से दे रही थी, इसलिए आत्मरक्षा और प्रतिरोध के लिए दूसरे रास्ते तलाशना जरूरी हो गया था। यह दिखाता है कि न्याय की लड़ाई में कभी कभी रणनीति बदलनी पड़ती है, भले ही वो रास्ता कितना मुश्किल क्यों ना हो।
दूसरा अहम मोड़ जाहिर है रिवोनिया ट्रायल में दिया गया उनका वो भाषण होगा कटघरे से।
निश्चित रूप से वो सिर्फ एक अदालती बयान नहीं था, वो एक राजनैतिक और नैतिक घोषणा पत्र था। उस भाषण ने मुकदमे का रुख ही बदल दिया। उन्होंने न सिर्फ अपने कामों को जायज ठहराया बल्कि दुनिया के सामने एक ऐसे दक्षिण अफ्रीका का नजरिया पेश किया जहां सब बराबर हों। और ये कहकर कि वो इस आदर्श के लिए मरने को तैयार हैं, उन्होंने खुद को और अपने आंदोलन को एक ऐसी नैतिक ताकत दी जिसे झुकाया नहीं जा सकता था। भले ही इसकी कीमत उन्हें आजीवन कारावास के रूप में चुकानी पड़ी, पर इसने उन्हें दुनिया भर में अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों का हीरो बना दिया।
और तीसरा निर्णायक मोड़, क्या वो जेल से सरकार के साथ गुप्त बातचीत शुरू करने का फैसला था? वो तो बहुत जोखिम भरा रहा होगा जैसा आपने बताया।
मेरे हिसाब से हाँ, वही तीसरा सबसे अहम मोड़ था। 1980 के दशक के मध्य में ये तहल करना असाधारण साहस और दूरदर्शिता का काम था। सोचिए, वो जेल में थे, अपने साथियों से कटे हुए, ANC की आधिकारिक नीति के शायद खिलाफ जाकर दुश्मन से खुफिया बातचीत शुरू कर रहे थे। उन पर आंदोलन को धोखा देने का आरोप लग सकता था, लेकिन मंडेला ने समझ लिया था कि गतिरोध तोड़ने और आगे बढ़ने का शायद यही एकमात्र रास्ता है। इसी पहल ने आखिरकार उनकी रिहाई और लोकतंत्र की बहाली के लिए बातचीत का दरवाजा खोला। ये उनकी व्यवहारिक समझ और रणनीतिक सोच का सबसे बड़ा सबूत है।
मंडेला की जिंदगी हमें इंसान होने के नाते क्या सिखाती है? 27 साल जेल में, वो भी रॉबिन आइलैंड जैसी जगह पर, और फिर भी अपनी गरिमा और हौसला बनाए रखना, ये सोचना भी मुश्किल है।
ये हमें सिखाता है कि सबसे मुश्किल और नाउम्मीद हालात में भी अनुशासन, एक नियमित दिनचर्या और जीवन में एक मकसद बनाए रखना कितना जरूरी है। रॉबिन आइलैंड पर उनका रोज पढ़ना, कसरत करना, यहां तक कि वो छोटा सा सब्जी का बगीचा लगाना, ये सिर्फ वक्त काटने के तरीके नहीं थे, ये अपनी इंसानियत, अपनी गरिमा और अपनी अंदरूनी आजादी को जिंदा रखने के तरीके थे। ये हमें सिखाता है कि बड़े से बड़े संकट का सामना भी एक लंबे नजरिए और अंदरूनी ताकत से किया जा सकता है। हार ना मानना, बस लगे रहना।
उनके नेतृत्व के तरीके से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खासकर वो पारंपरिक अफ्रीकी मूल्यों वाली बात जो आपने बताई।
हाँ, जैसे उन्होंने अपने बचपन में चीफ जोंगिन ताबा के दरबार में सीखा था कि पहले दूसरों को बोलने दो, सबकी सुनो, फिर अपनी राय दो और आम सहमति बनाने की कोशिश करो। लीडर वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोले, बल्कि वो जो सबको सुनकर साथ लेकर चले। और उससे भी अहम, अपने विरोधी को समझने की कोशिश करना। उनका अफ्रीकांस भाषा और इतिहास सीखना सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं थी, ये अपने उत्पीड़कों की सोच, उनके डर, उनकी दुनिया को समझने की एक ईमानदार कोशिश थी। ये उसूल आज भी किसी भी तरह के मतभेद या झगड़े को सुलझाने में बहुत काम आ सकता है, चाहे वो राजनीति हो, बिजनेस हो या हमारे अपने रिश्ते। दुश्मन को भी इंसान समझना, उसकी नज़र से देखने की कोशिश करना।
और माफ़ी और सुलह का सबक, शायद आज की इस बटी हुई गुस्सैल दुनिया में इसकी सबसे ज्यादा ज़रूरत है।
बिल्कुल, दशकों के जुल्म और निजी तकलीफों के बाद भी बदला लेने की बजाय सुलह का रास्ता चुनना शायद मंडेला की विरासत का सबसे ताकतवर संदेश है। यह हमें सिखाता है कि गुस्से और कड़वाहट को पकड़कर रखने से आखिर में अपना ही नुकसान होता है। सच्ची तरक्की, चाहे वो किसी इंसान की हो या समाज की, तभी मुमकिन है जब हम अतीत के जख्मों और आज की असहमतियों के बावजूद एक दूसरे को माफ करने और मिलकर आगे बढ़ने को तैयार हों। ये आसान नहीं है। मंडेला ने खुद माना कि माफी देना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने दिखाया कि ये मुमकिन है और जरूरी भी है।
तो इस पूरी गहरी बातचीत से अगर सुनने वालों के लिए तीन सबसे जरूरी बातें, तीन मुख्य निष्कर्ष निकालने हों, तो वो क्या होंगी?
पहली बात, एक भावनात्मक सीख या अंतर्दृष्टि कह सकते हैं। न्याय और आज़ादी की लड़ाई की बहुत बड़ी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ती है, जैसा मंडेला के परिवार और निजी जीवन पर पड़े असर से साफ है। लेकिन इतनी तकलीफ सहकर भी अपनी इंसानियत, अपनी करुणा को बचाए रखना और आखिर में माफ़ी का रास्ता चुनना मुमकिन है। यही असली अंदरूनी ताकत है, दर्द को नफ़रत में न बदलने देना।
दूसरी बात, एक बौद्धिक सीख। आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता और इसकी समझ वक्त के साथ बदलती और गहरी होती है। सच्ची आज़ादी सिर्फ अपनी जंजीरें तोड़ने में नहीं है, बल्कि इस तरह से जीने में है जिससे दूसरों की स्वतंत्रता का भी सम्मान हो और वो बढ़े, और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कभी उत्पीड़क थे।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसा मंडेला ने समझा, उत्पीड़क भी अपनी नफरत का कैदी होता है। मुक्ति सबकी होनी चाहिए, तभी वो सच्ची मुक्ति है। और तीसरी, एक सार्वभौमिक सीख। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर पर जीत हासिल करना है। मंडेला ने खुद माना कि उन्हें डर लगता था, कई बार लगा, लेकिन उन्होंने उस डर को अपने उसूलों और इरादों पर हावी नहीं होने दिया। यह हमें याद दिलाता है कि हम जैसे साधारण लोग भी अगर असाधारण नैतिक हिम्मत, लगन और अपने आदर्शों के प्रति ईमानदारी दिखाएं तो दुनिया में बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। स्वतंत्रता की यात्रा लंबी हो सकती है, बहुत मुश्किल हो सकती है, लेकिन इंसान के जज्बे से उसे पूरा किया जा सकता है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।